आयत नंबर 169 से। अल्लाह सुबहान ताला इन आयात में हम सबको फरमाते हैं, वला तखसबन अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और हरगिज़ न समझना इन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं, ये ना समझना। अगर आप बात समझना चाहते हैं तो आयत कैसे बनती है, वला तखसबन अमवाता, यानी तुम उन लोगों को मुर्दा न समझना। किन को? अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाह। अगर तर्जमे में इस तरह से आप तकदीम और ताखीर करते रहें तो आपको बात बहुत अच्छी समझ आएगी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मर जाते हैं उनको मुर्दा न तसव्वुर करना। क्या है बल्कि, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं। मुर्दा ना कहें तो फिर उनकी क्या कैफियत है? बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं अपने रब के पास। या अपने रब के पास को आप पीछे से भी जोड़ लें, यानी वो ज़िंदा हैं अपने रब के पास, या इसको अगले हिस्से से जोड़ लीजिए कि इंदा रब्बिहिम युरज़कून, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। और इनके साथ क्या होता है? आयत 170, फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, शादों फरहाँ हैं इस पर जो कुछ अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से अता किया। और इनके साथ क्या हो रहा है? वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और बशारत हासिल कर रहे हैं इन लोगों के बारे में जो इनके पीछे दुनिया में रह गए और अभी तक इनसे नहीं मिले। यानी शोहदा को जो एज़ाज़ मिलते हैं अल्लाह के रास्तों में, उसमें से एक एज़ाज़ क्या है कि अपने बाद वाले लोग जो अभी उसी रास्ते में कोशिश कर रहे हैं शहादत हक़ की गवाहियाँ देने में या अल्लाह के दीन के दिफा में, तो शोहदा को वहाँ जन्नतों में बता दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार, तुम्हारी फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ साथी, वो भी इसी रास्ते का राही है, और फ़िक्र ना करो, कुछ अरसे के बाद वो भी तुमसे मिलेंगे। यानी शहीद को बाद में शहीद होकर आने वाले बंदे की खबर पहले मिल जाती है, ये मुराद है। और क्या एजाज़ है? अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम, अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कि ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो हुज़न से दो चार होंगे, बस इतना ही है। नहीं, आयत 171, यस्तबशिरून बिनेमतिम मिनल्लाहि वफ़द्ल, वो खुशियाँ मना रहे हैं अल्लाह की नेमत की वजह से और इसके फ़जल की बिना पर। और इनको ये सब क्यों मिला? इसलिए कि वअन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, और इस बात पर कि अल्लाह अहले ईमान के अजर को ज़ाया नहीं करता। यहाँ तक आयात एक मज़मून की हैं। अभी तक जितनी बातें ग़ज़वे उहद के तनाजर में हुई वो उन लोगों के बारे में थी जो ग़ज़वे उहद से ज़िंदा बचकर वापस आ गए। ठीक है, कुछ ईमान वाले थे, कुछ निफाक वाले थे। लेकिन एक सवाल जहनों में उभरता है कि वो 70 लोग जो मारे गए उनका क्या हुआ? तो ये आयात उनके हाल अहवाल को ज़ाहिर करती हैं। कुछ लोग जो ज़ाहिर परस्त होते हैं और दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ भी होता है, उन्होंने उहद में शहीद होने वाले साथियों की मौत को बेकार मौत कहा, मौतें ज़ियाँ, ज़ाया हो गए। उनका ख्याल क्या था कि ये मुसलमान एक शख्स के बहकावे में आकर अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं, जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए हैं। वो कहता है निकल पड़ो, निकल पड़ते हैं। वो कहता है माल दे दो, माल देने लग जाते हैं। वो कहता है जान दे दो, जान देने लग जाते हैं। ये तो बस इमोशनल हो गए, इनकी तो अपनी कोई सोच नहीं रही। आज के दौर में जिसको कहें कि ट्रैप हो गए हैं, या आज के दौर में कह लीजिए कि हिप्नोटाइज हो गए हैं, या बेवकूफ़ हो गए हैं, या बातों में आ गए हैं, इस किस्म की बातें करके लोगों ने उन लोगों के अजर को कम करना साबित किया। तो अल्लाह ताला ने ये सारी आयात जो मैंने आपके सामने रखी ये नाजिल कर दी कि तुम्हें क्या पता। इस आयत की, बल्कि इन तमाम आयात की शान नज़ूल में अबू दाऊद में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक वाक्य आता है। नबी सल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वाक्य क्या है कि जब उहद का मामला हुआ और तुम्हारे भाई शहीद हुए تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا. وہ جنت کی نہروں اور باغات سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے لٹک رہی ہیں. جب انہوں نے اپنی راحت اور عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین یعنی ہمارے لواحقین, ہمارے پیچھے والے جو ہیں, ہمارے لیے دنیا میں غمگین ہیں. کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان تک پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد کی کوشش کرتے رہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں, ہم تمہاری یہ خبر ان تک پہنچا دیتے ہیں. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. یہ ہے زندگی تو زندگی, موت تو موت. جیے تو بندہ ایسا جیے کہ زندگی کے آخری سانس تک کلمہ حق کو بلند کرتا رہے, شہادت حق کی گواہیاں دے, کبھی بول کے, کبھی لکھ کے, کبھی سن کے, کبھی جان سے, کبھی ہجرت کے راستے, کبھی قربانی کے راستے, کبھی مال کے راستے. اور موت ایسی موت آئے تو کہ اللہ کے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, تم ان کو مردہ نہ کو. یہ کیسی خوبصورت موت ہے کہ موت کو بھی موت نہ کہا جائے, سوال کی بات ہے. تو یہ وہ موت ہے جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں آتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مر جو گئے تو پھر مردہ کیوں نہ کہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی وہ مقصد زندہ ہے جس کے لیے انہوں نے جانیں دی, اور شہید اپنی جان دے کر اسلام کی جان بچا لیتا ہے, شہید اپنا وقت پورا کر لیتا ہے اور اسلام کا وقت بڑھا دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے. اسی پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, شاید پانچویں پارے کے آخر میں پڑھیں گے کہ اللہ بڑا قدردان ہے. پانچویں پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ لوگوں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی, تم شکر کر لو, ایمان لے آؤ. وہ بڑا قدردان ہے کیونکہ وہ کان اللہ شاکرًا عَلِيمًا. تو یہ مقام ہے اللہ کے شاکر ہونے کو ثابت کرنے کا. ایک بندے نے جان دی اللہ کے راستے میں, اللہ نے ان کی زندگی کو جاویداں کر دیا, یہ خبر دے دی, یہ پیغام دے دیا, یہ میسج بھیج دیا, یہ ٹیکس کر دیا, یہ ای میل کر دی, کچھ بھی کہہ لیجیے آج کی زبان میں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. الذین قتلوا, اللہ کے راستوں میں جو گئے, دشمنوں کے ہاتھوں سے مرے, خود اس راستے میں کھپ گئے, خبر دے دو کہ شہدا کے لیے مقام قرب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو زندگی اور موت کا فلسفہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جس کو تم موت سمجھتے ہو حقیقت میں وہ زندگی ہے. تم صرف دنیا کا نقصان اور نفع جانتے ہو. یہی وجہ ہے نا کہ آخرت کے راستے میں جان دینا تمہیں اپنے آپ کو برباد کرنا معلوم ہوتا ہے. مگر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مرے تم سے زیادہ بہتر زندگی پا رہے ہیں, وہ تم سے زیادہ عیش میں ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں تو بہت سارے غم بھی ہوتے ہیں نا, ایون اگر انسان خوش بھی ہو. مثال ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سب نے جب سے شعوری سفر شروع کیا ہے قرآن کے ساتھ, آپ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سوچتے ہوں گے. اور اگر آپ نہیں سوچ رہے نا ابھی بھی, تو آپ کے ایمان میں کمی ہے. سب محرومیاں کمیاں پیچھے, اللہ جو تنہیں کتاب کی دولت دے دی یہ بڑی پیاری ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں, سردی بھی لگتی ہوگی کبھی, بھوک بھی لگتی ہے, گرمی بھی ہے, تھک بھی جاتے ہیں, زیادہ چل جائیں تو پاؤں بھی تھکن محسوس کرتے ہیں نا. آپ سوچئے کہ وہ ساری لذت جو دین کے ساتھ تعلق کے بعد بندے کے دل پہ آئے, تتنزل علیہم الملائکہ, اور ساتھ مزے کی بات کہ نہ ٹھنڈ لگے, نہ گرمی لگے, نہ تھکن, نہ بھوک, نہ پیاس, نہ سر میں درد, اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو. دنیا میں بادشاہ بھی ہے نا, تو اس کو بھی جب واش روم میں جانے کی ضرورت پڑتی تو کچھ تو بوجھ پڑتا ہے نا طبیعت پہ. شہدا کو اللہ یوں چھانٹ کے لے جاتا ہے جیسے دودھ میں سے کوئی بکھن کو بلور کے لے جائے. اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں اپنے راستے کے لوگ. سورت یاد آ رہی ہے, ولادی یادی دبخن فل موری یادی قدخن فل مغیراتی سبخن. پڑھ کے دیکھیے, اللہ نے ان گھوڑوں کے قدموں کی, ان کے ٹاپوں کے ٹپ ٹپ کی قسم کھائی ہے کہ جس پہ مجاہد سوار ہوتا ہے, جو اللہ کے دین کو بچاتا ہے, اس گھوڑے کی اتنی قدر ہے تو اس پہ بیٹھنے والے کی کتنی قدر ہے. اصل زندگی کا جو لطف ہے نا, فینٹسی रोमांटिसिज्म है जिंदगी का, वो अल्लाह के दीन को सर्व करना है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब सिर्फ हम खुद को सजा दे रहे हैं और खुद ही भुगतते हैं। जायज़ नाजायज़ की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो एक चॉइस है, एक लाइफस्टाइल है। जिसने ये चूज कर लिया, आप देखेंगे उसको पता चल जाएगा। लेकिन शैतान का मामला क्या है कि वो लोगों को पीछे कर देता है। उसका ख्याल क्या होता है कि जो ही वो इंसानों को अल्लाह के दीन को सर्व करता देखता है ना, तो उनके दिल में ख्याल डालता है, देख लो बहुत खौफनाक अंजाम होगा, अकेले रह जाओगे, शौहर छोड़ देंगे, हिजाब किया तो मियाँ तो तलाक दे देंगे, और तुमने अगर दीन को ज्यादा सर्व किया तो बच्चे तो तुम्हारे सारे चोर डाकू बन जाएंगे। यानी इतने बड़े बड़े खौफ बना के दिखाता है इंसान को दीन पे अमल करने के, कि आम इंसान तो ये सोच लेता है कि वाकई नहीं, इट्स टू मच, आई कैंट, मुझे नहीं करना, ये है वो है। लेकिन जिसके अंदर अल्लाह की कुव्वत पे यकीन, अल्लाह के गलबे का यकीन होता है, वो ऐसे वक्त में डट जाता है। अगला वाक्या हमें इसकी बात बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं और आप अपने आप से पूछें कि क्या मेरे दिल में अल्लाह के दीन को सर्व करने की सलाहियत है, ख्वाहिश है, खूबी है। देखिए, आपके अंदर और मेरे अंदर एक खूबी भी ना हो ना, नथिंग, हमें एक लफ्ज़ नहीं लिखना आता, एक लफ्ज़ नहीं बोलना आता, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ भी ना हो, जीरो क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर अंदर तड़प मौजूद है, तलब तड़प, तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपसे ये खिदमत जरूर लेगा। नबी ना उम्मे मकतूम को अल्लाह के नबी ने चुना ना, अमर बिन जमूह लंगड़े थे, एक टांग से चल नहीं सकते थे, अल्लाह ने उनको चुन लिया। घिसट घिसट के लोग मस्जिदों में पहुंच जाते थे, बच्चों को लेके औरतें आ जाती थी, ये करके आ जाती थी, क्योंकि उनके दिल में ये तड़प थी, तलब थी। कोई आके पूछता था, अल्लाह के नबी ये बताएं कि अल्लाह मेरी किस बात पे मुस्कुराता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह इस बात पे मुस्कुराता है कि बंदे के पास कोई हथियार, कुछ सबब नहीं, लेकिन मैदान जंग में कूद पड़ता है। सहाबी थे, ग़ालिबन अनस बिन नज़र थे या अनस नाम था कोई भी, उनके बाप थे। कहा अच्छा, अल्लाह को ये बात अच्छी लगती है कि असबाब है कोई नहीं, मीन्स कोई नहीं, और फिर भी मैदान जंग में कूद जाऊँ। एक ज़रा पहनी हुई थी, वो भी उतार दी कि किसी और के काम आएगी, मैं जाके अल्लाह को दिखाता हूँ ताकि अल्लाह देख के मुझे मुस्कुराए। हमें नहीं ये मुस्कुराहट नज़र आती, हम लोगों के चेहरे देखते हैं, हम उनसे खुश होना चाहते हैं, लेकिन जिनको आगे जन्नत दिखती है उनको इस दुनिया की चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। उमैर बिन हमाम जब गज़वे उहद में थे तो कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे उहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ, हाँ है उमैर, तू जन्नत में जाएगा। कच्चा, मैं जाऊँगा कच्चा। खजूरें खा रहे थे, एक खजूर खाई फिर दूसरी खाई, कहने लगे मैं कितना का मौका लूँ, जन्नत मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं खजूरें खाने में वक्त लगा रहा हूँ। वहीं थैला छोड़ा और मैदान जंग में भागे और जाके शहीद हो गए और उनको जन्नत मिल गई। अल्लज़ीन कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, बहुत आला मुकाम है, मार्फत का मुकाम है। देखिए, जिसको जिससे सच्ची मोहब्बत होती है उस तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलता है, जाते हैं कि नहीं अपने प्यारों को मिलने? सच बताएं, मैं और आप अपने प्यारों को मिलने ही जाते हैं ना, परदेश से निकल कर अपने मुल्क, चीज़ें तो सारी यहाँ मिल जाती हैं, सब कुछ है इधर, सिर्फ अपने नहीं है ना। बातें भी उनसे हम कर लेते हैं, तस्वीरें भी अब तो देख लेते हैं, मैसेज भी हो जाते हैं, कुछ छींक वहाँ मारता है पूरे ग्लोब पे पता चल जाता है फुलां को छींक आ जाई थी, लेकिन हम जाते हैं ना उनका कुर्ब लेने, गले मिलने, लम्स, चाहत, माँ के सीने से लगने, बाप से प्यार करने, तो बस ये मोहब्बत फासलों को आसान कर देती है। कोई अक्ल से पूछे, 16-18 घंटे की फ्लाइट लेके अमेरिका से एक बंदा पाकिस्तान जाता है, एक दो हफ्ता रह के वापस आ जाता है, क्या अकल की बात है? लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे मिलना है, मैं एक दफ़ा अपनी नज़रों से देख लूँ, मैं जीते जीते देख लूँ, पता नहीं ये सहारे कब टूट जाएं, यही सोचे ना। अब आप इन सारी मोहब्बतों को एक साइड पे करके ज़रा अल्लाह के साथ बंदे की मोहब्बत को लेके देखें, क्योंकि ये फलसफा ऐसे आपको समझ कोई नहीं आना, हमें तो एक सुई चुभ जाए तो हम कहते हैं हाय मैं मर गई, लेकिन ये कैसे आसान होता है? मोहब्बत आसान करती है। फिर इंसान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, फिर अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह से मुलाकात में कहता है 16 नहीं 20 घंटे भी सफ़र कर लूँगा, कुछ ना दो रास्ते में मैं पैदल भी चला जाऊँगा, मुझे तुम जाने दो एक दफा मैं देखाऊं। शहीद जो होता है ना वो सच्चा होता है अपने मकसद में, और ये एकदम नहीं होता कि आप जिंदगी तो गुजारे दुनिया के ऊपर गवाहियां देते हुए इसी के नफे नुकसान और इसी के 99 के चक्कर में, और एकदम बंदे को खबर आ जाए कि तुम शहीद हो गए। हमारे यहाँ लफ्ज शहीद बहुत ज्यादा यूज होता है, हर एक को शहीद भी बात सफा कह दिया जाता है। और कुछ सवाल आते हैं जिसमें से एक सवाल आप लोगों का कल का इधर रखा हुआ है, कल के सबक में भी थोड़ी सी बात हुई थी, तो सवाल था कि क्या पेट की बीमारी से फौत होने वाला भी शहीद है कि नहीं। तो यहाँ समझ लीजिए इस्लाम का मिजाज क्या है, काम तो अपनी असल से वही है जो कर लिया, असल शहादत तो वही है कि जिसके दिल में तड़प थी कि अल्लाह के दीन को सर्व करे, उसको बचाए, उसकी खिदमत करे, उसका दिफा करे, उसको फैलाए, इस तड़प में जान भी आगे चली गई तो अल्लाह के रास्ते में दे दी, असल शहीद तो ये है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उसके सवाब को उधर थोड़ा सा शामिल कर दिया जाता है। मसलन हमें बहुत सारी रिवायात से मिलता है, जैसे जिसमें एक ये भी है कि पेट की बीमारी से फौत होने वाला शहीद कहलाता है। बच्चे की पैदाइश के दौरान औरत मरती है तो शहीद है, डूब के मर गया तो शहीद है, अचानक मौत आ गई तो शहीद है, कोई अपनी जान बचाते हुए मर गया तो शहीद है। अब आप बताइए कि ये सब कुछ क्या उस वक्त होगा कि जो बंदा पेट की बीमारी से मरा एक नमाज भी नहीं पढ़ता, शराब उसके पेट में थी और मर गया, जी पेट की बीमारी से मर गए। हमारे कल्चर में इन हदीसों और फजाइल की इस रिवायात को इतना आम कर दिया गया कि बाज़ दफ़ा लोग फिर असल मकसद छोड़ के यही मन्नतें मानते रहते हैं कि एक दफ़ा ख्वाब में नबी दिख जाए, ये वजीफा कर लूं कि अल्लाह के नबी दिख जाए। क्यों? वो हदीस पढ़ ली है कि जिसने अल्लाह के नबी को देख लिया उसको जन्नत मिल जाएगी, मिसाल है। ये बात नहीं है, आप किसी शॉर्टकट से जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ शॉर्टकट काम आते हैं कब, जब इखलास और यकीन होता है। हदीस तो ये कहती है कि आप अपने घर के बिस्तर पे फौत हो रहे हैं और फरिश्ते वहां जाके लिख देते हैं कि ये अल्लाह के रास्ते में शहीद है। क्यों? क्योंकि तड़प ये थी कि कुछ करूं। अगर जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजर रही है ना तो इत्मीनान से मरे, डोंट वरी, अल्लाह ताला आपकी हक तलफी नहीं करेगा, उसको पता है कि आप किस काबिल है और आपके साथ क्या होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कैसे लोगों को कहो कि बस तुम बेफिक्र हो जाओ। हम किसी के मरने पे क्या कहते हैं, हाय बेचारा, हाय बेचारा, उसके साथ ये वो, उसके बच्चे पीछे रह गए। लोग तो मरने वालों पे यही नोखी करते हैं ना, गम करते हैं, हम खुद गर्ज होते हैं उस वक्त, हम कहते हैं हाँ इनको भी मरना नहीं चाहिए था। देखिए एक तो अपनी मौत है ना जो आती है बीमारियों से परेशानियों से, एक अल्लाह के रास्ते की मौत है। कभी जाने वालों के बारे में भी तो सोचो कि उनको वहां कितनी खैर मिली होगी। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र ना करो कि उनके साथ वहां क्या हो रहा है, बस ये दुआ करो कि जिस मकसद में उन्होंने जान दी है उसी मकसद को तुम हासिल करो। अब आप देखिए कि यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी, ख़ास तौर पे ग़ज़वे उहद में जो लोग फौत हुए, ग़ज़वे उहद हुई 70 लोग मारे गए। अब 70 जब मारे गए तो फिर उसके बावजूद शिकस्ती हुई थी, तो क्या उनका अजर ज़ाया हो गया? ये जो हमने पिछले इस सबक से, जो पिछला एक हाफ था ना जिसमें हमने आखिर में जो पूरा किया, जो मुनाफिकीन की बातें थी, हमें लड़ना आता तो ये कर लेते, वो आता तो करते, ये जो बातें गॉसिप थी उसको सामने रख के समझ लीजिए कि लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी कि इनकी मौत जाया हो गई बेकार। और आज हम भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा भाई देखो बेचारे मर भी गए और फायदा फिर कोई नहीं हुआ, तो क्या ओहद के मैदान में मरने वालों का अजर जाया हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस था। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आज के दौर में कोई शख्स इस्लाम की तरफ आता है ना तो लोग क्या कहते हैं, लो जी हमारी कोशिशों से क्या होना है, आज कोई नमाज पढ़े कहते हैं लो जी हमारी नमाजों से अल्लाह ने माफ़ करना है। कई लोग आपके इस कुरान पढ़ने को बेकार काम कहेंगे, छोड़ो तुम्हारे अब कुरान पढ़ने से कुछ चेंज आनी है दुनिया में। तो देखिए जिस मकसद के रास्ते में फतह काम देती है ना वहाँ नुकसान और शिकस्त भी फायदे देती है। आज के दौर में ये जो सेंचुरीज चल रही हैं, पता नहीं आगे कितना आगे और अल्लाह ताला ने वक्त लेना है हम लोगों से, लेकिन ये इस दौर के जो मुस्लिम्स की एफर्ट्स है ना, बज़ाहिर इसका कोई फल नहीं, ये हम छोटी छोटी क्लासे लगा के बैठ जाते हैं नकार खाने में, तोती की आवाज़ कौन सुनता है, चंद लोग आ जाते हैं सुनते हैं, जो नहीं आते वो शुक्र कर रहे होते हैं कि हम नहीं फंसे, जो आते हैं बाज़ दफ़ा उनको बोझ लगता है बीच में छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। ये कोई क्लासे हैं या ये कोई दीन की खिदमत है जो हम सारे आज के दौर में कर रहे हैं? लेकिन ये छोटी छोटी टोलियां बदलियां, याद रखिए एक वक्त आएगा रंग लाएंगी। इस दौर में हमारी कोशिशों से ना खिलाफत राशिदा आए, ना इस्लाम फैले, ना दुनिया में इस्लामी निफाज है, लेकिन याद रखिए कि मेरा और आपका अजर ज़ाया नहीं होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब आग भड़काई गई, तब चारों तरफ आग के अलाव थे, कोई सूरत नहीं दिखती थी उस आग को बुझने की। और एक अबाबील या एक परिंदा, रिवायात में आता है कि अपनी चोंच में पानी भर के लाया, समंदर में से कितना को पानी आया होगा, एक दो कतरे, और आके इब्राहिम की आग को बुझाना चाह तो बाकी परिंदों ने देख के उसका मजाक उड़ाया, ले तेरी इतने से पानी से ये आग बुझनी है? तो उसने कहा मुझे क्या लगे, हु केयर्स, मैं तो बस कल क्यामत के दिन अल्लाह को ये कह दूंगी कि अल्लाह ताला मेरी चोंच इतनी थी। यही बात हमें कही जा रही है, याद रखिए कल क्यामत के दिन ये कहने में बंदा सच्चा हो कि अल्लाह चोंच इतनी थी। है ये असबाब थोड़े थे, और शुक्र करे थोड़े असबाब हैं बच जाएंगे, ये तो पकड़ उन लोगों की होनी है जिनके पास असबाब बहुत हैं, लेकिन सर अपनी जान और माल पे लगा रहे अगली आयतों में आने वाला है मैसेज। तो लिहाजा कभी भी अल्लाह ताला किसी का अजर ज़ाया नहीं करता, कभी किसी की कोशिश को हकीर ना जाने। 100 को बुलाते हैं और एक आता है ना, दो नफिल पढ़ के आया करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे जैसे बेअमल के कहने पे कोई एक आ गया, मेरे तो करतूत ही ऐसे थे कि मेरे कहने पे कोई भी ना आए, मैं तो इतनी बुरी हूँ कि मैं तो किसी को बुलाऊं तो किसी को आना ही नहीं चाहिए, ये तो तेरी रहमत आता है। फिर देखिए लोगों से आपके गिले कितने दूर होते हैं, फिर आपके अंदर दर्द आएगा, फिर मोहब्बत आएगी, फिर आप तड़पेंगे उनके लिए कि अल्लाह मैंने इन लोगों के लिए करना है। लोग बातें करते थे, अल्लाह उनकी कदर करता है, इससे बढ़ के कोई कदर कर सकता है किसी की? शहीद के जिस्म से खून का एक कतरा जमीन पे गिरता है, हदीस में आता है कि उससे पहले उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे को, शहीद को आसमान से पुकारता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ग़ज़वे उहद के कुछ दिन के बाद कि हज़रत जाबिर बड़े प्यारे सहाबी थे, बड़े उदास बैठे हुए, अच्छा गरीब भी थे और बहनें थीं इनकी बहुत सारी, अकेले भाई थे, और आपको पता है कि फाइनेंशियली फिर भाई के ऊपर बहुत बोझ होता है। नबी सल्लम ने उनको देखा कि उदास बैठे हुए, आपने उनको बुलाया, कहा जाबिर तुझे क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी बस बाप याद आ रहा है, बाप चला गया एक तो वो, फिर आगे बहनों का बोझ है, मुआशी बोझ बहुत था, हाथ बड़ा तंग था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप के जान निकलने से पहले आसमान से अल्लाह ताला ने झांक के उनको अपना दीदार करवाया। तुम रोते हो, वो तो इतनी बड़ा एजाज पा गए, तुम इस पे दुखी हो? तो ये बात सुन के हजरत जाबिर जो थे वो मुस्कुरा उठे। अब ये तो मैं और आप रो दो कर रहे होते हैं, हमें क्या पता कि वहां या ये तो नफ्सुल मुतमईन इरजिला रब्बी की रा दिया तब मर दिया, ये तो जो जा रहा होता है उसको बताता है। जैसे बाद दफा हम अपने किसी प्यारे को खुदा हाफिज कह के एयरपोर्ट से आते हैं तो बड़े उदास होते हैं, आपको क्या पता उधर पहुंच के वो इस वक्त कितना मजा कर रहे हैं। जिससे कोई जाता है वो तो उदास होते हैं, लेकिन जहां आते हैं वहां वो तो खुश होते हैं ना। तो लिहाजा कभी किसी के बारे में ऐसा ना सोचें। अच्छा शहीद की जिंदगी पे भी थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि इससे शिर्क का एक दरवाजा खुल गया। बस लोगों ने शोहदा की कब्रों पे जाके मांगना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि अल्लाह ने कह दिया जी जिंदा है, और कुछ ने तो सोने पे सुहागा इससे भी ज्यादा आगे जुरत कर ली, वो कहते हैं देखो जब आम शहीद जिंदा है तो फिर नबी क्यों जिंदा नहीं। लिहाजा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने कब्रों में ना सिर्फ ये कि नबियों की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को साबित किया, बल्कि कहा कि आपकी बीवियां आपके पास पेश की जाती हैं, ये जहालत की बात है। इंदा रब्बिहिम, अल्लाह कहते हैं ना तो तुम उनकी मौत को समझ सकते हो और ना तुम उनकी जिंदगी को समझ सकते हो। देखिए अगर शहीद वैसे ही जिंदा होता जैसे आज मैं और आप जिंदा हैं, तो फर्स्ट थिंग यह है कि शहीद की बीवी बेवा क्यों होती? फिर उसको तो कभी दोबारा निकाह नहीं करना चाहिए था आगे। हालांकि आप खुद पढ़ते हैं सीरत के वाकयात में कि एक सहाबी की बीवी जब वो शहीद होते हैं तो उससे दूसरा मर्द निकाह कर लेता था। फिर शहीद के बच्चे यतीम क्यों होते हैं, और फिर शहीद का विरसा क्यों बटता? तो अकीदा रखिए फौत हो जाता है, रूह ही नहीं जिंदा रहती बल्कि जिस्मों को मट्टी तक नहीं खाती। एक वाक्य आपने सुना होगा कई दफ़ा, बड़ा मारूफ वाक्य है कि इराक में एक मौके पे सहाबा की कब्रों को खोला गया, यानी उस दौर के जो दीनदार थे आलिम थे उनको मुसलसल ख्वाब में बताया जा रहा था कि फला जगह कोई सहाबी हैं और उनकी कब्रों में पानी आ रहा है। ये लंबा वाक्य है, एक पेपर था, हैंड आउट मैंने पिछली क्लासों में पूरा पढ़ के भी सुनाया गालिबन, लेकिन उसका खुलासा यही था कि मुसलसल ख्वाब आ रहा था, फिर एक दफ़ा आया, फिर दो तीन दफ़ा आया, फिर उन्होंने उस वक्त के जो खलीफा थे उनसे बात की कि ये फलां जगह पे ऐसा दिखता है मुझे कि ये हो रहा है। खैर उन्होंने सब मशवरा कर करा के फिर उस जगह की खुदाई की, बिल्कुल पानी समंदर के करीब कोई जगह आ चुकी थी, तो वाकई देखा कि अंदर कब्रें थी, सारे इतने साल पुरानी कब्रें थी, कब्रें भी अंदर हैं और ज़मीन से पानी रिस रिस के अब उन तक आ रहा है। अब सोचोगे कि क्या करें, फिर ये फैसला हुआ कि इनको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। फिर क्रेनें मंगाई गई बड़ी, बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल अंधेरे में रात को, ऐसे कि दूसरे लोग खामखा इसको भी तो शिर का जरिया ना बना ले, तो उनको फिर वहाँ से उठाकर और उनके और दूसरी जगह पर डाला गया। और कहते हैं कि जब उनकी कब्रें खोली तो उनके कफन ऐसे सफ़ेद चमक रहे थे जैसे अभी डाले हैं। ला तकूलुल अमवातन, वो मुर्दा नहीं होते। इसी तरह तारीख में ये तक आता है कि शोहदाए उहद की कब्रों को भी खोदा गया था एक मौके पे, यानी अल्लाह ताला मट्टी को हुक्म दे देता है कि तुम इनको कुछ ना करना। और आपको पता है कि जब शोहदाए उहद थे तो इन सबको शुरू में बेचारों को बस सबको एक ही जगह दफन कर दिया गया था, किसके पास इतनी होश थी। अभी आप पढ़ेंगे आगे, फिर अगले दिन एक जंग शुरू हो रही है, हम तो थक जाते हैं ना थोड़े दिन के बाद, लेकिन वो नहीं थकते थे। इस तरह से हजरत जाबिर के बाप को और इनके साथ एक और सहाबी को इकट्ठा दफन किया गया, मगर एक महीने बाद या कुछ अरसे के बाद फिर उनको दूसरी जगह से तीसरी में किया गया। तो जब कब्रें खोदी गई तो बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म की, जैसे एक नए बंदे को दफन किया जाता है वैसे होता है। और बाद में आपको पता है कि हजरत जाबिर भी शहीद हुए। क्या वो जज्बे होते हैं कि जिस रास्ते में माँ बाप लगते हैं उसी में औलादें लगती हैं। ये अल्लाह के दीन को सर्व करने की बात थी। और कहते हैं कि 20 ज़िलहज 1351 में हज़रत जाबिर की कब्र को बदला गया था किसी वजह से, तो उनकी लाश भी बिल्कुल वैसी थी। तो बहरहाल ये बातें सुनने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन एक रिवायत में यहाँ तक आता है तिरमिज़ी की रिवायत हज़रत जाबिर से कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह किसी से कलाम नहीं करता मगर पर्दे के पीछे से, मगर तेरे बाप को ए जाबिर अल्लाह ने ज़िंदा किया, फिर उनसे कलाम किया और कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो फिर मुझे दोबारा ज़िंदगी दे और मैं तेरे रास्ते में शहीद हो गया हूँ। यानी तुम तो उनके जाने पे इतने दुखी और वो आने ही नहीं चाह रहे, ये वही बात हो गई ना, कि आप किसी के बारे में दुखी और वो कहे मैंने नहीं आना, मुझे इस तरह नहीं चाहिए। तो बहरहाल आप देखिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी बातें।